प्यारे भाइयों और बहनों, हम तो पहुंच गए हमारी क्लास नंबर 14 आत्मा की पढ़ाई का तीसरा और अंतिम भाग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे, बात करेंगे लाजर और अमीर के बारे में। पिछले दो क्लास में हमने साफ साफ समझ लिया है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार, बाइबल के अनुसार, मनुष्य का आत्मा तो नाशवान है, ये मरता है। मनुष्य के अंदर कोई आत्मा नहीं होता है, बल्कि मनुष्य ही एक जीवित आत्मा है। ठीक है, तो हम सब तो आत्माएं हैं जिनको मरना है, ये तो हमने वचन इसके लिए पढ़ लिए हैं। लेकिन अभी ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस में हम बात कर रहे थे कि बाइबल में तीन चार तो हमने कल देख ली, एक पांचवा और ऐसा वाक्य है जिसमें लगता है कि मरने के बाद कोई ऐसा जीवन है जिससे हमें बचने की जरूरत है, जो अमीर और लाजर के दृष्टांत में दिखाया गया है। तो ये पढ़ते हैं लूका 16 का 19 से लेके 31 तक। लूका 16 अध्याय 19 से लेके 31 तक। सोलह का 19 से लेके 31 तक।
जी। एक धनवान मनुष्य था जो गहरी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान को मेज पर घुटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को बांटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और सरदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और जैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु जब वह शांत की पा रहा है और तू तड़प रहा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी
गड्ढा
ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं खुद से विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता, अब्राहम पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेगा।
तो ये एक दृष्टांत है जिसको ईसाई मानते हैं, दो शिक्षाएं, एक तो आत्मा मरती नहीं है और दूसरा उसके बाद एक ऐसी जगह है यहाँ पे सदा का सताना रखा हुआ है, जैसे ये अमीर सत रहा है ना, ऐसा माना है। और ये माना जाता है कि जो अमीर है वो तो नरक में गया और जो भिखारी लाजर था वो तो स्वर्ग में गया।
तो यहाँ तक वो चढ़ाया तो गया नहीं, वो तो ऐसे दुख होता है वो नरक में, आग में तो जाने के बाद आदमी मर जाता है, फिनिश हो जाता है।
लेकिन हम अगर ध्यान दें 22वें वचन में तो बोला है, हाँ 22वें वचन में क्या बोला, भिखारी मरा और दूत उसको किसकी गोद में ले गए,
अब्राहम की गोद
में, यहाँ तो स्वर्ग नहीं लिखा है। तो अगर अगर ये माना जाता है, अगर ये माना जाता है कि कंगाल भिखारी जो है वो स्वर्ग में गया, तो क्या इब्राहिम की गोद स्वर्ग है जिसमें वो लेके गया? तो इसका मतलब ये साधारण भाषा नहीं है। और दूसरी बात, क्या स्वर्ग जाने का यही तरीका है, हम भी किसी कोढ़ी बन जाते हैं घाव वाव लगा के किसी के गेट के सामने पड़े? और दूसरी बात, कोई ऐसे गेट के सामने आपको बैठने देगा हमेशा? आप फोड़ों से भरे हुए हो, कुत्ते आपको चाट रहे हैं, और ऐसे किसी को बैठे बैठे रहने दे सकते हो आपके गेट पर? अगर आप बोलोगे आगे जाओ भैया, है ना, आगे जाओ। और तीसरी बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि कुत्ते कभी भी ना जीवित इंसान को नहीं चाटते, कुत्ते मतलब कुत्ता जीवित इंसान के नज़दीक नहीं आता है, मरे हुए के पास जरूर चला जाएगा लेकिन जीवित इंसान के घावों को तो नहीं चाटेगा। हम देखते हैं कितने स्टेशन पे कितने पड़े होते हैं, लेकिन कुत्तों को कभी चाटते देखा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारे जो वचन, और दूसरी एक और बात सोचने वाली ये है कि अपना सोचने वाली बात है कि ये अमीर जल रहा है और बोलता बस अपनी अपनी आप आग में, चलो आग में तो छोड़ो, बड़ी धूप में खड़े हो, गर्मियों की धूप है, 1 बजे का समय और आप उसमें काफी देर से खड़े हो, और सिर्फ आपकी जुबान पे एक तुपका ऐसे लगा दूं मैं तो आपको चैन मिल जाएगा? जैसा इसमें बोला है कि बस अपने वो पोता ही लगा दे तो मुझे शांति मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोलता 16:24 में पढ़ लो, ये 24 में,
तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का चिरा पानी में भिगो कर मेरी जीत को ठंडी करें, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ।
तो ये जरा सोचिए, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा आराम मिल जाएगा आपकी जुबान पे तुपका गिर जाए तो? तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने बोला ये दृष्टांत है, ये साधारण भाषा नहीं है। आज जो ये अनुवाद होता है ये समझते हैं ये साधारण भाषा है, अमीर तो ऐसे हो, तो फिर पास्टर लोगों को बोलो अमीर होना छोड़ दो, क्योंकि तुम भी नहीं स्वर्ग में जा सकते। पास्टरों को क्या चाहिए आजकल, अच्छी सी कोठी हो, गाड़ियां हो, गनमैन हो, और सब बढ़िया हो। और मैंने सुना है गढ़दीवाल में पास्टर है, उसके जूतों की कोई गिनती नहीं है, लोग जूते लेके आते हैं और पहनाते हैं उसको, राजाओं जैसा। गढ़दीवाल, गढ़दीवाल ये इधर दसुए के नजदीक है, काफी बड़ा चर्च है वो भी, ये बलवीर लोग उधर ही जाते थे। तो फिर तो ये भी अमीर से कम नहीं है, पता नहीं। तो ऐसा क्या ये ही तरीका है स्वर्ग जाने का कि हम भिखारी बन जाएं और फोड़े वोड़े हमारे शरीर पे निकल आए, कुत्ते हमें चाटे, तब ही हमें शांति मिलेगी स्वर्ग में जाके? तो पहली बात तो ये साधारण भाषा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया क्या है, दृष्टांत। पढ़ लो मत्ती 13:34।
बातें यीशु ने दृष्टांत में लोगों से कही और बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ ना कहता था।
प्रभु यीशु मसीह लोगों से बिना दृष्टांत के बात नहीं करता था, और प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत शुरू करने का तरीका पता क्या होता था? लूका 15:11 पढ़ो। ए सर्टेन मैन, सर्टेन मतलब है नहीं कोई, एक आदमी ऐसा था, ऐसा
लूका 15:11।
हाँ जी, दृष्टांत की शुरुआत।
जो मुंह में जाता है
नहीं ना,
फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे।
किसी, ये तरीका होता था दृष्टांत का। 16:1 भी पढ़ लो।
16:1 फिर उसने चेलों से कहा किसी धनवान का एक भंडारी था।
धनवान, किसी धनवान का। तो ये इंग्लिश में एक शब्द जो आता है ना सर्टेन, इंग्लिश में शब्द देख लो क्या आता है, ए सर्टेन मैन, सर्टेन।
15:11
नहीं, आप गलत बोल रहे थे।
लूका में बोल रहे तो मसीह में ढूंढ रहे हो।
तो सर्टेन शब्द आता है, ठीक है। ऐसे ही एक लूका 19:12 में भी पढ़ लो। तो ऐसे दृष्टांत की शुरुआत करते हैं प्रभु।
अतः उसने कहा एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि
एक धनी मनुष्य, ठीक है। और फिर 20:9 भी पढ़ लो।
तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई।
तो ये भी दृष्टांत की शुरुआत ऐसे ही हुई। 16:19 पढ़ लो अभी, लूका 16:19।
एक धनवान मनुष्य था, मेहनती कपड़े और मलबे।
बस, तो ये प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा रहस्य वाला दृष्टांत है। बहुत बड़ा रहस्य, बहुत गहरा रहस्य। वो क्या है वो आज हम समझेंगे, इन चिन्हों को समझेंगे। तो इस दृष्टांत में दो लोग हैं, कौन? एक तो अमीर, एक तो लाजर। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। ये कोई अमीर और गरीब की बात नहीं हो रही है, दो तरह के लोगों की बात हो रही है। दो ग्रुप, दो झुंडों की बात हो रही है। एक तो अमीर और एक तो लाजर, भिखारी, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। जैसे हमने देखा ना, प्रभु यीशु मसीह वो अमीर के बारे में भी, एक अमीर था, उसके दो पुत्र थे, एक पुत्र उजाड़ू था, एक पुत्र अच्छा था, है ना। तो ये दृष्टांत का तरीका था प्रभु। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कौन हो सकता है? ये अमीर। अभी अमीर कौन है? अमीर पता कौन है इस दृष्टांत में? प्रभु यीशु मसीह तस्वीर बना रहे हैं इस दृष्टांत के जरिए। अमीर है इजराइल देश, अमीर है इजराइल देश। अभी ये इजराइल देश क्यों, ये मैं बताता हूं। इजराइल देश, ये इसकी दृष्टांत की शुरुआत 16:19 पढ़ लो। एक अमीर था, वो क्या पहनता था? बैंजनी।
एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता।
बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, अभी
भोगविलास की धूमधाम से साथ रहता था,
ठीक है। तो ये बैंजनी कपड़े पहनता था, मलमल, बैंजनी और मलमल के कपड़े पहनता था और रोज भोगविलास करता था। तो आओ इन चिन्हों को समझते हैं अभी कैसे। बैंजनी यानी कि पर्पल रंग, बैंगनी रंग, वो किस चीज का चिन्ह होता है पता? बैंगनी, बैंगनी कलर कौन पहनता था यहूदियों में? राजा लोग। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भी कौन से कपड़े पहनाए थे पता है आपको? कौन से? यूहन्ना 19:2-3, दो तीन,
सिपाहियों ने कांटों का मुकुट बीन कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया।
हाँ, बैंगनी। तो बैंगनी रंग का मतलब पता क्या होता है? राजाओं का रंग, वो राजा पहनते थे, ठीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे ना यहूदियों का राजा, तो ये राजाओं का रंग था, उसको राजाओं का रंग दिया था, ठीक है। तो वो बैंगनी रंग के कपड़े पहनते थे। इसका मतलब क्या था? कपड़े पहनने का मतलब है कवरिंग, कवर करना, शरीर को, शरीर को क्या करना, कवर करना। तो इसका मतलब क्या है, ये चिन्ह है इज़राइल देश के लिए कि परमेश्वर ने जो राज्य के वायदे दिए थे वो तो सिर्फ इज़राइल देश को दिए थे। परमेश्वर ने जो वायदे दिए थे इज़राइल देश के थे वो। ये पढ़ लो निर्गमन, निर्गमन 19 का 5 और 6।
इसलिए अब यदि तुम निश्चित मेरी मानोगे और मेरी बातों का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निर्धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही है।
तो परमेश्वर की नजर में सारी पृथ्वी में से जो खास थे वो कौन थे?
इज़राइल।
तो इसलिए परमेश्वर ने बोला अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे सारे वायदे तुम्हारे हैं। तो बैंगनी रंग के कपड़े पहनने का मतलब क्या? परमेश्वर ने इज़राइल देश को सारे राज्य के वायदे दिए। परमेश्वर के राज्य के वायदे जो थे वो और किसी को नहीं दिए, किसको दिए?
इज़राइल
देश को। ठीक है, अभी ये तो बैंगनी रंग के कपड़े। उसके बाद बोलता मलमल, है ना, मलमल इंग्लिश में है फाइन लिनन, मलमल फाइन लिनन। तो मलमल का मतलब पता क्या होता है? ये पढ़ते हम प्रकाशित वाक्य 19 का 8।
इसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है।
मलमल का मतलब होता है धार्मिकता, धार्मिकता धर्म के काम, धार्मिकता। तो परमेश्वर धार्मिकता का मतलब पता क्या होता है? जिनके पाप माफ हो गए, जिनके पाप माफ हो गए। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले तक, मैं यहूदी युग की बात कर रहा हूं, यहूदी युग में आप और मेरे पापों की क्षमा मिलने का कोई भी जरिया नहीं था। हमें क्षमा किस पे कैसे मिलती है? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा। हम हैं अन्य जाति, चलो मैं बता देता हूँ, वो जो गरीब है ना फोड़ों से भरा हुआ, वो है हम अन्य जाति। परमेश्वर की नज़र में दो ग्रुप है, एक तो इजरायली, एक तो अन्य जाति, जैसे जेंटाइल बोलते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पता क्या बोलते हैं औरत को, वो जो आती है कुएं पे, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं बेटों का खाना मैं कुत्तों को दूँ, बेटों का खाना कुत्तों को दूँ।
औरत ने क्या बोला था? प्रभु
तो ये जो अन्य जाति है हम, जो यहूदी नहीं है, और यहूदी है वो अमीर। तो हाँ, तो कैसे? अभी मलमल का मतलब है धार्मिकता। इजराइलिया के पास उनके पाप माफ करवाने का एक साधन था। हर साल परमेश्वर ने उनके लिए एक दिन, प्राश्चित का दिन ठहरा रखा था, जिस दिन वो बकरों और बल्द का बलिदान होता था और उनके पाप क्या हो जाते थे? क्षमा हो जाते थे। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी साधन तो नहीं था, सही ना? अन्य जाति के पास ऐसा कोई साधन नहीं था। अन्य जाति के पास साधन कब आया? प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हमारे पाप क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं। लेकिन इजरायलियों, इजरायली तो परमेश्वर की नजर में क्या थे? धर्मी थे, क्योंकि उनके पाप हर साल क्षमा हो जाते थे। कब? वो प्राश्चित के दिन। पढ़ना है वो वचन, पढ़ लो। लेवी, लेविया, लेवे व्यवस्था 16:29 से लेके 31 तक। 31 उत्पत्ति निर्गमन और उसके बाद
29
से लेके 31 तक।
तो लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि सातवें महीने के सातवें दिन को तुम अपने जीव को दुख देना और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो कोई भी किसी प्रकार का काम काज न करे क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रार्थित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने जीव को दुख देना यह सदा की विधि है। जीव को दुख देना मतलब
जीव इट शैल बी सब्बत
जीव को दुख
एंड ही शैल इफ्लिक्ट योर सोल जी सोल्स लिखा है आपको तुम अपने आत्माओं को दुख देना मतलब शरीर को कष्ट देना।
16 से 31
ठीक है शरीर को कष्ट देना मतलब यही के जो भी है अपना शारीरिक रूप से जो भी क्या बोलते हैं उसको रिपेंट करना। तो ये इजराइल के पास तो तरीका था पाप माफ करवाने का प्रायश्चित का दिन जिस दिन उनके सब पाप लेकिन अन्य जाति के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था तो इसलिए वो तो बैंजनी और मलमल के कपड़ों से कवर थे मतलब राज्य के वायदे परमेश्वर ने इसराइल को दिए थे और उनके पाप तो परमेश्वर की नजर में कवर थे मतलब के ढके हुए थे ठीक है और वो रोज भोग विलास करते थे। भोजन का मतलब क्या है चिन्ह रूप में रोटी का मतलब क्या है चिन्ह वचन तो उनके पास परमेश्वर का वचन था और किसी के पास नहीं था क्योंकि बाइबल भी नहीं लिखी गई थी उस वक्त तो उनके पास तो पुराना नियम था भविष्यवक्ताओं के शब्द थे वचन थे तो वो सब तो वो रोज खाते थे उनके पास वो थे लेकिन हमारे पास वो नहीं था सही है ठीक है। तो देखो कितनी बड़ी आशीष थी इज़राइल देश की कितना बड़ा परमेश्वर ने मतलब के कृपा की थी इज़राइल पे। व्यवस्था सार 4:6-8 तक पढ़ लो और उसके बाद 33 व्यवस्था सार 4:6-8 तक चार का छह से लेके आठ तक पढ़ो।
और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे
इसलिए तुम उनको धारण करना और मारना क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चित यह बड़ी जाति विद्वान और समझदार है देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे सभी रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर होगा जबकि हम उसको पुकारते हैं फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो जैसी कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ
कौन है ऐसी जाति और सुन लो 33वां वचन पढ़ लो 33 इसी का आप तो सर रहने दिया करो आप सुन लिया करो आप उधर खोए रहते हो
क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही जैसे कि तूने सुनी है
इज़राइल के साथ तुम्हारे साथ बातें की परमेश्वर ने ऐसा किसी और जाति के साथ हुआ नहीं तो ये इसीलिए इसको चिन्ह दिया गया अमीर परमेश्वर ने कितने, देखिए इनके पाप माफ थे, परमेश्वर की नजर में ये धर्मी थे, राज्य के वायदे इनके साथ किए, और इनको रोज परमेश्वर का वचन मिलता था, इनके पास भविष्यवक्ता थे, इनके पास पुराना नियम था, सब तो बढ़िया था, है ना। इसीलिए फिर से पढ़ लो अमोस 3:2, परमेश्वर क्या बोलता है, सारी पृथ्वी से मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूं,
पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों को दंड दूंगा।
तो परमेश्वर बोलता है पृथ्वी पे जितने जातियां कुल हैं उनमें से सबसे मैंने मेरा मन तुम पे ही लगा है। अभी आपको देखना है ये यहूदियों की आशीष क्या थी, यहूदियों की बैलेंस शीट, अमीरी की बैलेंस शीट, खाता ये देख लो, रोमिया 3:1 पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कौन सा वचन। रोमिया 3:1
अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खसने का क्या लाभ,
क्या फायदा है इनका, मैं बताता हूँ भी फायदा, उसका उत्तर देख लो रोमिया 9:4-5।
वे इजराइली हैं और लेपाधिकार और महिमा और बादशाह और
ये, इसको एक एक से पढ़ो, अधिकार
वे इजराइली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और बादशाहें और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा,
और प्रतिज्ञा देखो क्या है, मतलब के परमेश्वर ने इनको लेखपन का मतलब अडॉप्ट किया है, इनको गोद लिया है, और महिमा और प्रताप और वाचाएं और व्यवस्था, परमेश्वर की सेवा, प्रतिज्ञाएं, सब तो इन्हीं की है। और सबसे बड़ी आशीष पता क्या, सबसे बड़ी, इस दुनिया का बचाने वाला भी इन्हीं से ही आएगा। 5वां वचन पढ़ लो, हाँ जी,
पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ।
देखो
सबके ऊपर परमेश्वर, परम परमेश्वर युगानुग धन्य हो, आमीन।
देखा, तो इसलिए इसको बोला प्रभु यीशु मसीह ने अमीर, इज़राइल देश को बोला क्या,
अमीर।
कितनी थी परमेश्वर की कृपा, कितना था परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का ध्यान, सब 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 किस पे था।
लेकिन ये जानते थे यहूदी लोग के परमेश्वर हमारी जाति में से
क्या,
ये लोग जानते थे,
ये जानते थे मसीहा वो तभी तो बोलते मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, आने वाला है, मसीहा आया चला गया नहीं पता चला, तो मसीहा का ही तो इंतजार कर रहे थे। वो औरत नहीं बोलती प्रभु यीशु मसीह को, हमें पता है मसीहा यहूदियों में से निकलने वाला है, मसीहा से बात कर रही थी, ठीक है, पता था ये बात। सभी तो वो जो पंडित लोग थे वो जो
गए, हाँ
वो यहाँ पे, हाँ तो उनको पता था, चिन्ह पता था कहाँ पैदा होना है। तो कितनी सुंदर, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको चिन्ह दिया क्या, अमीर का। अभी हाँ अभी बात करते हैं भिखारी,
हम बोल सकते हैं कि बैंगनी रंग बाइबल में अमीरी का चिन्ह है ना,
बैंगनी रंग राजाओं का चिन्ह,
राजाओं का चिन्ह है ना।
तो अभी बात करते हैं भिखारी, भिखारी पता कौन है, भिखारी है अन्य जाति जो बहुत गरीब थे, जिन पे परमेश्वर की आशीष और कृपा नहीं थी, और ये क्या थे, पूरी गरीबी में। ये पढ़ लो लूका 16:20-21 पहले पढ़ लेते हैं, फिर चिन्हों को समझेंगे।
लादर नाम का एक कंगाल भावों से भरा हुआ उसकी देवी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि वे की धनवान की मेज पर भूषण से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके भाव को
चाटते थे।
तो जी ये लागत वही है जो कंडीशन है जिससे हुआ लगे
तो ये भिखारी जो लाजर नाम का था, ये तस्वीर दिखाई है प्रभु यीशु मसीह में वो लोगों की जो यहूदी नहीं थे, जो यहूदी नहीं थे यानी बाकी बचा हुआ संसार, अन्य जाति जिसको बोल सकते हैं, हम सब अन्य जाति हैं। तो अन्य जाति वाले थे ये गरीब, तो भिखारी मतलब जो परमेश्वर की आशीषों से गरीब है, आशीषों से जो परमेश्वर की आशीषों से क्या है गरीब है, उन पे परमेश्वर की कोई कृपा नहीं, मतलब पूरी तरह से गरीबी में है, फोड़ों से भरे हुए, फोड़ों, फोड़े का मतलब पता क्या है, फोड़ा क्या है, एक मतलब के शरीर पे एक्स्ट्रा चीज, तो फोड़ों का मतलब है पाप, फोड़ों का मतलब क्या है पाप, और उन पाप से उनको माफी नहीं मिल सकती थी, कोई तरीका नहीं था माफी प्राप्त करने का, ठीक है, इसलिए फोड़ों से पूरा शरीर क्या हुआ था, भरा हुआ था, मतलब के पाप ना माफ होने की स्थिति। अन्य जाति जो परमेश्वर की आशीषों से बहुत गरीब थी, परमेश्वर की आशीष नहीं थी, फोड़ों से भरी हुई थी, मतलब पाप उनके माफ नहीं हुए थे, ना पाप माफ हुए की स्थिति थी, दरवाजे पे बैठे रहते थे। दरवाजा क्या होता है, देखिए ये आपका गेट है, गेट में दीवार है, गेट के इस तरफ है आपका घर और गेट के उस तरफ है दीवार। एक भिखारी जो आएगा आपके दीवार पे मांगने, उसको वो आशीष नहीं रहेगी जो आपके बेटे को रहेगी, सही बात है, सही ना, जो गेट के उस तरफ है उसको आशीष रहेगी आपकी नहीं, लेकिन जो गेट के अंदर है जो आपका बेटा है उस पे तो आपके बहुत प्रेम और सब रहेगा ना। तो इसी तरीके से कहने का ये है फेवर, परमेश्वर का फेवर जो था वो इसराइलियों पे था, और इसमें थी एक दीवार, वो दीवार थी खतने की दीवार। ये बात पढ़ लो एफिसियों 2:14,
क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में ढा दिया।
तो अलग करने वाली दीवार थी ना जो ढा दिया किसने, मसीह ने, ये जो खतना और खतना रहत वाला जो बितकरा था परमेश्वर की नजर में, ये जो बात थी इसको खत्म कर दिया किसने, प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने द्वार किसके लिए खोल दिया, अन्य जाति के लिए द्वार खोल दिया, ठीक है। तो ये दीवार का मतलब क्या है, गेट का मतलब क्या है, कि परमेश्वर का कोई फेवर नहीं है, कृपा नहीं है, परमेश्वर का फेवर सिर्फ इज़राइल पे है, बाहर वालों पे नहीं है, अन्य जाति। तो वो दीवार थी ये खतने की दीवार, खतना सर्कमसिजन जो यहूदियों का रिवाज था। जो मुसलमान है, मुसलमानों ने खतने का जो रिवाज है वो यहूदियों से ही सीखा है, क्योंकि मुसलमान यहूदियों से ही निकले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यहूदियों के लिए बड़ी कृपा थी, और ये जो भिखारी यानी अन्य जाति थी ये जूठन खाते थे। जूठन, जूठन का मतलब क्या था, कि बचा खुचा, जो बचा खुचा होता है ना, जैसे मती 15:25 से लेकर 28 तक पढ़ लो, मती 15:25 28 25 से लेकर
पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो
उनके
मेज से गिरता है। तो हमारे लिए बुलाता है ना
आगे
चूर चार। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो।
तो चूर चार बचे खुचे का मतलब है कुछ आशीष हम पे भी दे दो। अन्य जाति वाले भी वो आशीष क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, हमें भी मिल जाए वो आशीष, है ना। और अगला चिन्ह क्या है, कुत्ते उसके फोड़ों को क्या करते थे, चाटते थे। आपको पता है जब कुत्ते चाटते हैं ना फोड़े को तो आराम सा मिलता है, अच्छा लगता है।
उनको ये वो भी है जैसे वो अपने जख्म को भी चाटते हैं, चाट करके
ठीक हो जाता है, तो आराम मिलता है चाटने से। तो ये कुत्ते, कुत्ता बाइबल में अशुद्ध जानवर है, आपको पता है, ठीक है। कुत्ता का मतलब यहूदियों को बोला था वो जानवर जिनके पैर ऐसे हों उनको नहीं खाना है। लेविया 11:27
और चार पांव के बल चलने वाले और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं।
सब
जो कोई उनकी लोग छुए सांस तक अशुद्ध रहे।
तो अशुद्ध कुत्ता जो है, ये कुत्ता है, कुत्ते की उदाहरण है। कुत्ता अशुद्ध जानवर है परमेश्वर की नजर में, तो ये कुत्ता जो था अशुद्ध जानवर है। तो मतलब इसका मतलब पता क्या है, फोड़ों का मतलब क्या है, पाप। और कुत्ते, कुत्ता है अशुद्ध जानवर, तो इसका मतलब है ये जो अन्य जाति वाले थे ये अपने पाप माफ करवाने के लिए अशुद्ध तरीके इस्तेमाल करके इनको लगता था शायद इनके पाप माफ हो गए। जैसे आज हम देखते हैं लंगर लगता है, पूड़ियाँ छोले पानी पिलाया जाता है ये सब। और हिंदू रिवाज में भी आपने देखा बकरों के बलिदान होते हैं,
बलि प्रथा,
वो यहूदियों को देख के ही ये ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये जो सब आज जो अच्छाई के काम दिखाए जाते हैं ये अशुद्ध तरीके से, ये परमेश्वर की नज़र में क्या है, अशुद्ध। और इन लोगों को लगता है शायद हमने कुछ अच्छे कर्म कर दिए और हमारे पापों की शायद हमें क्षमा मिल जाए, ऐसा मानते हैं ना। किसी के घर में कोई बहुत बीमार, कोई बहुत अमीर है और कोई बीमार पड़ा हुआ है, वो क्या लंगर लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, शायद हमारे की कोई कृपा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये तरीके ढूंढे फिर अन्य जाति वालों ने के हमारे भी ऐसे यहूदियों के पाप माफ होते हैं, शायद हमारे भी पाप क्या हो जाए। अशुद्ध तरीके ढूंढे अपने घावों को चंगा करने के लिए, यानी पापों को मिटाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो नहीं स्वीकार है, ठीक है। तो ये तस्वीर दिखाई है किसकी, यहूदियों की और अन्य जातियों की। फिर ये स्थिति थी कब तक, जब तक जैसे आपने देखा ना ये अशुद्ध तरीके मूर्ति पूजा और अंधविश्वास, बच्चों के बलिदान और ये जो मंदिरों में टेंपल प्रोस्टिट्यूशन और ये सब जो अशुद्ध तरीके जिनसे लोगों को लगता शायद हमारे पाप माफ हो जाए, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में पाप माफ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये स्थिति थी अन्य जाति की। अब क्या हुआ आगे दृष्टांत में देखते हैं, लूका 16:22।
ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर मरा और गाड़ा गया।
तो ये अभी मरना है चिन्ह खत्म होने का, एंड, मरने का मतलब है एंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोलते हैं वो समय का अंत हुआ। कौन से समय का?
यहूदियों
परमेश्वर की जो यहूदियों पे कृपा थी और अन्य जातियों पे जो कृपा नहीं थी, उस समय का क्या हुआ? अंत हुआ। और फिर क्या हुआ, जब ये भिखारी मर गए, मर गया, तो दूत उसको कहाँ ले गए? तो यानी अन्य जाति जिन्होंने सुषमाचार को स्वीकार किया, जो मसीही बने, वो परमेश्वर के फेवर में चले गए, परमेश्वर ने कृपा कर दी। हाँ, यहूदियों पे फेवर अभी खत्म हो गया,
यहाँ खत्म हो गया ना,
अभी अन्य जातियों पे आ गया,
मरा और गाड़ा गया।
हाँ, तो अन्य जातियों पे आ गया, और अन्य जाति को, इसको लाजर को कहाँ ले गए? इब्राहिम की गोद। कौन ले गए? दूत। दूत कौन है? दूत है वो जिन्होंने सुषमाचार का प्रचार किया अन्य जाति को। प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जाति को सुषमाचार का प्रचार नहीं किया। किसने किया? पत्रस ने और पौलुस ने। ये है वो दूत। तो दूत इस भिखारी को यानी अन्य जाति को कहां ले गए? परमेश्वर के फेवर में ले गए, परमेश्वर की आशीष में ले गए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो पौलुस था वो अन्य जातियों के लिए चुना गया था,
वो तो यहूदियों में भी गया था,
यहूदियों में जाता था लेकिन मार खाता था,
वो लोग सब पता थे, पर मना करता था, मज्जा
होता, मज्जा, लेकिन उसको प्रेम था तो जाता था,
तो बोलता था परमेश्वर ने चुना ही मुझे।
तो पत्रस, पत्रस था वो जिसने यहूदियों के लिए दरवाजा खोला, पता कॉर्नेलियस के घर पे पवित्र आत्मा आई थी जब, ठीक है। तो ये है वो जो दूत, इनके साथ थे कुछ बारनबास, तीतर, सिलास, लूका, सब। तो ये उसको कहाँ ले गए? इब्राहिम की गोद। इब्राहिम की गोद का मतलब पता क्या है? गलातियां 3:7 पढ़ लो।
ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है।
समझ गए? गोद में कौन रहता है? संतान। और हम विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान बन जाते हैं। किस पे विश्वास के द्वारा? प्रभु यीशु की। ये है इब्राहिम की गोद, जिसको, जिसमें कौन ले गए हमें? दूत। दूत कौन? ये जो जिन्होंने सुषमाचार का प्रचार किया। दूत, दूत का मतलब होता है जो संदेशा देता है, सुषमाचार सुनाने वाले। ये दूत हमें इब्राहिम की गोद में ले गए, यानी इब्राहिम के उत्तराधिकारी बन गए हम। उत्तराधिकारी मतलब उसके वारिस बन गए। 3:16-29 में ये बात पढ़ लो। हाँ, 16 और 29।
अतः प्रतिज्ञा अब्राहिम को और उसके वंश को दी गई, वह नहीं कर कहता वंशों को जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को और वह मसीह है। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है।
तो इब्राहिम के वंश बन गए हम, अन्य जाति जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुषमाचार पे, प्रचार पे विश्वास करके तो मसीही बन गए, ठीक है। तो वो जो समय था वो उसका अंत हुआ, परमेश्वर की आशीष का अंत हुआ इज़राइल देश के, और परमेश्वर की ना आशीष का अंत हुआ अन्य जाति पे। अन्य जाति पे आशीष होनी शुरू हो गई और यहूदियों पे सजा शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली, पढ़ लो मत्ती 23:38 में, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। मत्ती 23:38
देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है,
उजाड़ छोड़ा जाता है,
क्योंकि परमेश्वर ने काफी चांस दिए थे ना उनको।
तो प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों के साथ अंत होता है यहूदी युग का और शुरुआत होती है सुसमाचार युग की। तो ये तस्वीर जो है बड़ी तस्वीर दिखाई जा रही है यहूदी युग और सुसमाचार युग, ठीक है, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार युग, यहूदियों के लिए यहूदी युग, ठीक है। तो ऐसा हुआ और जब ये समय ऐसा हो गया तो फिर उस स्थिति में जो अमीर था वो आंखें उठाता है, फिर लूका 16 का 23 और 24 पढ़ लो।
और अगर लोग में इतने कीड़ा में थोड़ी हुई
और दूर से अब्राहम की गोद में नादर को देखा, तब उसने पुकार कर हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस उजाला में
आग में जल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, ठीक है, इस आग में तड़प रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये तस्वीर दिखाई है इसराइल की स्थिति की। इसराइल का क्या हुआ था आपको अगर हिस्ट्री पता हो, 70 ईस्वी में ये देश का नाम निशान खत्म हो गया था। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन हुआ, जो सूली पे चढ़ाया गया, वो है 33 ईस्वी में। 70 ईस्वी में ये देश ना रहा, खत्म हो गया। और ये जैसे बाकी सारे देशों में इनको क्या कर दिया गया, बिखेर दिया गया, कॉलोनियां बना के रहते थे इनकी। इनकी जो अभी भी जो इंडिया में भी बॉम्बे में सिनोगॉग बोलते हैं इसको, जैसे इनकी कॉलोनी अलग ही होती है सिनोगॉग। ये पढ़ लो बात, जकरिया 7:13-14, जकरिया 7:13-14,
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा, वरना मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा
तितर-बितर कर दूंगा, हाँ,
और उनका देश उनके पीछे ऐसा सुदर पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इस प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उधार दिया। मनोहर
मतलब बहुत सुंदर देश।
अच्छा, बहुत सुंदर देश।
तो ये 70 ईस्वी में इसराइल की हिस्ट्री में ये देश खत्म हो गया था, कोई नहीं था इसमें। इस पे कब्जा किसने कर लिया था पता, फिलिस्तीन ने। तो वापस जमीन ली है इन्होंने आके अपनी, देखो इतने से देश में वापस जमीन ली है, लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 1948 में ये वापस देश बनाया इसराइल देश करके, वो भी मैं बताऊंगा ये सब क्या है भविष्यवाणियों के जरिए से।
तो अभी जो लड़ाई हो रही है वो इसी के लिए हो रही है, अपनी जमीन लेने के लिए, सीरिया से फिलिस्तीन से, ना
सीरिया फिलिस्तीन समझता है जो जमीन हमारी है, लेकिन वो इसराइल की जमीन है, ठीक है। तो ये तस्वीर दिखाई जा रही है इसराइल की स्थिति की, कि जब परमेश्वर का न्याय आया, आग का मतलब है परमेश्वर का न्याय, इनको तितर बितर कर दिया, इनका देश खत्म हो गया, कोई किसी देश का आना जाना नहीं था, ये लोगों के बीच में जाके मुजाहिदों की तरह रहते थे, मुजाहिद जैसे कोई देश बाहर से देश से आके बसता है ना, उसको बोलते हैं मुजाहिद। जैसे इंडियन पाकिस्तान में जो बंटवारे के वक्त वो
बोलते हैं इंडियन मुजाहिदीन,
हाँ, तो मुजाहिद होता है जो
दूसरे देश का
इस देश में आया है और इस देश की कृपा के सहारे रह सकता है। तो ये था इन पे न्याय, क्योंकि ये खुद इन्होंने बोला था 27:25 में, क्या बोले, इसका लहू हम पे और हमारी संतान पे है। ये पढ़ लो बात 27:25।
27 तक की, सब लोगों ने उत्तर दिया इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो।
देखो इसके लहू की जिम्मेदारी हम उठाते हैं, तुम इसको सलीब दो। ठीक है, तो ये मान लिया उन्होंने और इसका दंड उनको भोगना पड़ा, उनका देश खत्म हो गया और इनको तितर बितर कर दिया। कॉलोनियों में बसे ये पूरे वर्ल्ड में, ये देख लो कहीं पे भी आप, इंडिया में भी आए थे यहूदी और रूस, और रूस में जाना गए थे, और ऐसे सब देशों में सब कंट्रीज में क्या हो गए दिखते। तो ये जो दिखाया जा रहा है ना, उसने अपने अधोलोक में आंखें उठाई, जब ये देश देश ना रहा तो अब्राहम को दूर से देखा। दूर से देखने का मतलब अभी परमेश्वर की कृपा इनके नहीं है, और क्या देखते हैं, लाजर उसकी गोद में है। गोद का मतलब अभी जो कृपा हो रही है वो क्रिश्चियन कंट्रीज से, जैसे उस समय उसके बाद जो क्रिश्चियन कंट्रीज आए जैसे यूरोप, इनको जब देखा इन पे कितनी आशीष हो रही है परमेश्वर की, तो दूर से देखा और बोला कि हम पे कुछ कृपा कर दो, पानी का तुपका थोड़ी बहुत आशीष हम पे कर दो। तो इनको परमेश्वर की तरफ से थोड़ा फेवर मिला, क्या इनकी कॉलोनियाँ बन गई, इनको जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अनुमति दे दी, चलो अपना स्कूल बना लो, तुम अपनी सेपरेट कॉलोनी बना लो, तुम्हें कोई नहीं छेड़ता, तुम्हें बेसिक थोड़े बहुत ह्यूमन राइट्स भी अधिकार भी मिल गए, यहाँ तक के इनके पास अधिकार भी नहीं थे, अधिकार मिल गए, ये सब ऐसा हो गया।
तो फिर अभी ये कैथलिक वगैरह ये सब यहूदी हैं?
नहीं नहीं, ये तो यहूदी नहीं है,
ये
तो अन्य जाति है जो,
लेकिन चलते तो ये उसी का है जो यहूदी करते जैसे कैथलिक समुदाय।
मैं आपको बताता हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जब देखा परमेश्वर की आशीष तो अन्य जाति वालों पे हो रही है, क्रिश्चियंस पे हो रही है, इन्होंने बड़ा इसको भेज और हम पे वो तुपका लगाए और हमें थोड़ी राहत मिली, तो परमेश्वर से थोड़ा फेवर मांगा कि हमें कॉलोनिया स्कूल या घर बनाने के लिए जगह का इंतज़ाम हो जाए, तो वो अनुमति इनको मिल गई। तो आगे 25वें पढ़ लो, लूका 16:25, हम ये ख़त्म कर लें फिर हम बात करते हैं।
परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुआ, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है।
तो परमेश्वर बोल रहा है, तस्वीर दिखा रहा है, बोलता है देख पर मेरी योजना के अनुसार, जो युगों की योजना है मेरे वचन के अनुसार, यहूदी युग की आशीष खत्म हो चुकी है, अभी जो आशीष है वो अन्य जाति की है, सुसमाचार युग में जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो अन्य जाति जो जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तुमने अपना आनंद जो है वो ले लिया है। आगे 26 में पढ़ लो,
इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी
बहुत बड़ी खड्डा है।
हाँ, इसको लोग पता क्या बोलते हैं, गड्ढे को खाई बोलते हैं, बोलते हैं,
मैं बताता हूँ, गड्ढा
ठहराया गया कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके।
तो ये खड्डा पता क्या, मैंने आपको पहले ये है खड्डा, वो खतने का विश्वास, जो खतना है ना वो है ये खड्डा। यहूदी मानते थे, यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, वो मानते थे कि हमारा, इसीलिए वो बोलते थे अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर से भी तू बड़ा है, वो पूछते थे तू उनसे भी बड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते, जब तुम्हारा अब्राहम पैदा भी नहीं हुआ था तब मैं था, लेकिन उनको नहीं समझ आई, आत्मा नहीं थी, मैं बताऊंगा इसका भी मतलब क्या है। ठीक है, तो ये खड्डा क्या था, एक विश्वास, एक बैरियर, एक तरह का इधर से उधर नहीं जा सकते तुम,
हाँ
इधर से उधर नहीं जाने दे रही आपको खतने की। आप सोचते हो कि प्रभु यीशु मसीह को हम साइड पे लगा के हम तो सीधा परमेश्वर से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ये मौका अभी खत्म हो चुका है, ये बहुत बड़ा खड्डा है, इसको खत्म करना है तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, तभी आशीष मिलेगी। ये देख लो, ये बात गलातियां 3:1 में पौलुस बोल रहा है, गलातियां को यहूदियों को बोल रहा है, देखो
हे निर्बुद्धियों गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया।
देखो बोला आत्मा, ये विश्वास के काम यानी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास और व्यवस्था को मिक्स मत करो जैसे आज किया जाता है। व्यवस्था भी बोलते मानो और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास भी करो, इसको मिक्स नहीं कर सकते, इसको मिक्स नहीं कर सकते। व्यवस्था खत्म कर दी प्रभु यीशु मसीह ने, वो जो 10 कानून थे उनको खत्म कर दिया, क्योंकि 10 कानून के जरिए से आप कभी धर्मी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, कोई नहीं कर सकता उसको पूरा। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पूरा किया उसको, और कोई नहीं, एक गिरा हुआ इंसान उसको नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्यवस्था हमें नहीं माननी है, हमें, हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। और अब यहूदी भी व्यवस्था के द्वारा नहीं बचाए जाएंगे, इसी विश्वास के जरिए से ही बचाए जाएंगे। योहन्ना 9 का 28 और 29 के बारे में भी पढ़ लो ये बात। 9 का 28 और 29। यहूदी तो आज भी नहीं मानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, आपको पता है ये बात।
तब वे उसे भला बुरा कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है।
प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे थे, हमें तो मालूम है मूसा से तो बातें की, तुम कौन हो? प्रभु यीशु मसीह को सुनना पड़ा। तो इसलिए आज भी ये बात है, आज भी ये अविश्वास है, यहूदी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, इसराइल वाले
आज भी नहीं करते।
अभी उनका अंधापन दूर होने का समय नहीं आया है, आएगा अभी जब वर्ल्ड वॉर होगी तीसरी। तो ये एक बहुत बड़ा खड्डा है जो खतना वाले हैं, खतना यहूदी समझते हैं कि हम परमेश्वर से सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी वो चीज खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ यहूदी लोग में था जब तक प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ, उसके बाद जो विश्वास करेगा वही बिताया जाएगा, लेकिन यहूदी इस बात को आज तक भी नहीं मानते हैं। चलो ये बहुत बड़ा, ये है वो खड्डा, विश्वास और व्यवस्था का जो खड्डा है कि हम व्यवस्था कर पूरी करके धर्मी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। व्यवस्था को पहली बार पूरा ही नहीं किया जा सकता, नहीं दिए थे लेकिन उसने भी नहीं, एक ने ही पूरे किए आज तक, वो है प्रभु यीशु मसीह, बस और किसी ने नहीं। चलो तो ये है वो खड्डा, और आगे 16 का 27 से लेके 31 तक पढ़ लो, लूका 16 का 27, हाँ आगे पढ़ लो,
आगे 27 से। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए।
देखो तो ये बोल रहा है, हम पे दया चल ठीक है, मैं तो जिस स्थिति में हूँ अभी ठीक हूँ, मेरे बाकी भी 5 भाई हैं, उनके पास भेज दे ताकि वो तो बच जाए। तो प्रभु परमेश्वर बोलते हैं, जब उन्होंने मूसा और नबियों की नहीं सुनी तो अब क्या करेंगे वो। तो ये 5 भाई पता कौन है, 5 भाई आपको पता है इसराइल देश की हिस्ट्री, इसराइल देश कितनी जातियों से बना था, 12, कितनी जातियां,
12
याकूब के 12 पुत्रों से बना था इसराइल देश। जब सुलेमान की मौत हुई तो सुलेमान की मृत्यु के बाद ये 12 का बंटवारा हो गया 2 और 10 में। ये बात पढ़ लो दूसरा इतिहास 11 का 1 से लेके 4 तक,
दूसरा इतिहास
11 का 1 से लेके 4।
जब यहूदा और बिन्यामीन के घराने को जोड़ मिलकर 180,000 अच्छे योद्धा थे।
किसको? यहूदा और बिन्याम, बेंजामिन और यहूदा एक आगे
अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया इसराइल के साथ युद्ध करें।
तो सुलेमान की मृत्यु के बाद ये देश, ये जो 12 इसराइल पूरा देश था, ये दो हिस्सों में बट गया। एक में दो भाई हो गए, दो परिवार हो गए, यहूदा और बेंजामिन, और एक में बाकी 10 और 2। ठीक है, 10 और 2। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था ये दो वालों में, यहूदा में ये जन्म हुआ था प्रभु यीशु मसीह का। तो इसकी इनकी राजधानियां भी अलग अलग हो गई थी। इसराइल की राजधानी हो गई थी कौन सी, यहूदा की थी यरूशलम, और इसराइल की मुझे ध्यान में नहीं गई। तो क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए। तो अभी ये जो बात हो रही है ये है यहूदा, ये जो दो, मतलब कि अभी दो दो के जोड़े बनाओ तो 12 भाइयों के कितने जोड़े बन गए, 12 भाइयों के
6।
एक भाई पहले ही फंसा हुआ है, वो कौन है, यहूदा वाला, जहाँ पे यीशु मसीह आए थे। वो बोल रहा है हम चलो ठीक है हम नहीं बचे, लेकिन वो बाकी 5 हैं, वो 10 भाई मेरे दूसरे भाई,
दो
की जोड़ी से वो 5 भाई बन गए, 5 × 10 ना। तो इसलिए वो 5 भाई का मतलब है इसराइल के घराने के वो जो 10 जातियाँ थी जो एक भाई बना था, तो वो है 5 भाई। देखो कितनी बड़ी गहरी और रहस्य पूर्वक है ये बात, 5 भाई, वो 5 भाई है इसराइल देश, और वो जो 2 भाई एक बना वो है यहूदा, क्योंकि बंटवारा हो गया था ना 12 का 2 और 10 में, आपस में इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। तो ये जो 2 वाला एक भाई बोलता है मेरे बाकी 10 भाई यानी 5 भाइयों को वो करो, उनके पास भेजो ताकि वो बचाए जाए। तो वो बोलते हैं उसने मूसा और नबियों की नहीं सुनी, मतलब कहने का कि उनके पास तो मूसा की गवाही थी और नबियों के द्वारा दिया हुआ पुराना नियम था, उन्होंने सब नहीं माना, तो अब कौन सा वो क्या कर लेंगे। ठीक है, तो वो बोले अगर मुर्दों में से कोई जी भी उठे, इसका मतलब ये चिनात्मक भाषा है, मुर्दों में से जी उठे का मतलब क्या है कि अगर इस अन्य जाति में से जाके कोई इनको बताए भी
तब भी
इन्होंने, मेरी बात सुनो, इन्होंने मूसा पे विश्वास नहीं किया जिसको ये मानते मूसा ने परमेश्वर को देखा, मैं बातें की, तो अन्य जाति वाला इनको बताएगा जाके तो क्या ये मान लेंगे, तो ये परमेश्वर बोल रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों इस दृष्टांत का मतलब, इसका कुछ नहीं लेना देना अमीर और गरीब से, कुछ नहीं लेना देना है स्वर्ग और नरक से, जैसा आज बोला जाता है। लेकिन ऐसा ये इसराइल का एंड नहीं है, ये आगे पढ़ लो इसराइल का फ्यूचर क्या है, अब वो भी पढ़ लो रोमियों 11:25-26।
हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस देश से अनजान रहो। कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा।
तो जब तक ये अन्य जातियों का अभी सुषमाचार युग जब खत्म नहीं होता तब तक वो ऐसे रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनका उद्धार होगा, कलीसिया पूरी होने के बाद इसराइल का जो उद्धार है वो तो तय है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये है आत्मा के 3 भाग जिसमें हम देखते हैं, आत्मा तो मरती है और आत्मा देखा जा सकता है, आत्मा है हम आप और ये सारी मनुष्य जाति है जीवित आत्मा, और सबने तो मरना है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे नर्क की पढ़ाई के साथ, तब तक परमेश्वर ही आप सबको आशीष दे, आमीन।